केशव के कहने पर इशिका सिंघानिया मेंशन आई हुई थी। उसने खुद को पूरी तरह छुपा रखा था। इशिका राधिका से मिलना चाहती थी। श्रुति और आदर्श ने उसे बाहर से ही भेजना चाहा, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त अभिमन्यु भी सिंघानिया मेंशन आया हुआ था। अभिमन्यु के आने का फायदा उठाकर इशिका भी अंदर चली गई थी। इशिका जैसे तैसे करके राधिका के कमरे तक तो पहुंच गई थी, लेकिन आदर्श और श्रुति उसे बाहर निकालना चाहते थे। इशिका के इतना शोर करने के बावजूद भी राधिका की नींद नहीं टूटी। तब वो श्रुति और आदर्श से सवाल जवाब करने लगी। हालांकि अभिमन्यु ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रहा था। अभिमन्यु के सवालों के जवाब ना देने पर अभिमन्यु पुलिस बुलाने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला ही था कि श्रुति जल्दी से उसके पास आकर बोली, रुक जाइए मिस्टर राजवंश, हम राधिका का बुरा नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं कि उसे नींद लेने में दिक्कत होती है, बस यही सोचकर हमने उसे नींद की दवाई दी है। फिर श्रुति ने पलटकर इशिका की तरफ देखा और हल्के गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, ये कब से अपना चेहरा छुपा रही है और राधिका से मिलना चाहती है। आप हमें अच्छे से जानते हैं, फिर इसके बावजूद आप हम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। श्रुति के कहते ही आदर्श गुस्से से इशिका को घूरने लगा था। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो अभिमन्यु का सहारा लेकर यहां तक आई थी, लेकिन उसकी हरकतें उसे ही शक के घेरे में खड़े कर रही थी। इशिका ने हल्की सी खांसी ली और अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे गलत मत समझिए, मैं इशिका की दोस्त हूँ। मुझे यहाँ मिस्टर केशव सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया का हालचाल पूछने के लिए भेजा था। केशव सिंघानिया का नाम आते ही वहां एक चुप्पी छा गई थी। अब कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा था। श्रुति ने सिर हिलाया और इशिका से कहा, तुम ये पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें रोकती नहीं और ना ही इतने सवाल पूछती। श्रुति और अभिमन्यु केशव के नाम आने पर भले ही सामान्य हो गए थे, लेकिन केशव का नाम सुनकर आदर्श ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली थीं। अभिमन्यु का ध्यान उसके हाथों की तरफ गया तो उसने सार्कास्टिकली सिर हिलाया। आदर्श ने इशिका की तरफ देखते हुए हल्के सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अब तुमने उन्हें देख लिया है और वो बिल्कुल ठीक है, जाकर उन्हें बता देना। प्लीज यहां से बाहर चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि राधिका की तबीयत पर कोई बुरा असर हो। आदर्श के कहते ही अभिमन्यु तुरंत कमरे से बाहर चला गया था, जबकि इशिका वही खड़ी थी। उसने आदर्श से कहा, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उनकी पूरी हेल्थ का अपडेट लूं। उन्हें कब तक होश आएगा? अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आप बता दीजिए, बाहर डॉक्टर तैयार खड़ा है, वो उन्हें अटेंड करने के लिए आ जाएगा। बाहर चल के बात करते हैं, आदर्श ने एक बार फिर कहा तो मजबूरन इशिका को बाहर आना ही पड़ा। अभिमन्यु ने उनकी बातें सुन ली थीं। बाहर जाने का कहकर आदर्श ने इशिका को तो टाल दिया था, लेकिन अभिमन्यु ने आदर्श से कहा, कल इशिका का अंतिम संस्कार है, मैं चाहता हूँ कि मिसेस सिंघानिया वहां आए। क्या वो अपनी बेटी को आखिरी विदाई देने के लिए नहीं आएंगी? अगर वो वहां आने की स्थिति में नहीं है तो हम डॉक्टर बुला ही लेते हैं। बातों ही बातों में अभिमन्यु जानना चाहता था कि राधिका की तबीयत सच में ठीक है या नहीं। आदर्श ने जवाब में कहा, मैंने बताया ना मिस्टर राजवंश, वो बस थकी हुई है, इस वजह से सो रही है, और कल वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने के लिए जरूर आएगी। अगर डॉक्टर की जरूरत होती तो मैं खुद उसे हॉस्पिटल ले जाता। आदर्श दुनिया के सामने एक ऐसा पति था जो राधिका से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता था, कोई उस पर सवाल उठा ही नहीं सकता था। इस बार आदर्श के जवाब ने उन लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था। इशिका और अभिमन्यु दोनों ही नहीं सोच सकते थे कि आदर्श राधिका को नुकसान पहुंचा सकता है। आदर्श ने गहरी सांस ली और आगे कहा, सोने से पहले वो बार बार कह रही थी कि उसे इशिका को अंतिम विदाई देनी है। चिंता मत कीजिए मिस्टर राजवंश, वो कल वहां जरूर आएगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, आदर्श बोला। उसने फिर इशिका की तरफ देखा, जिसकी नजरें कमरे के अंदर राधिका को देख रही थीं। इशिका के वहां से ना हिलने पर आदर्श ने इशिका से सख्ती से कहा, मिस, आप जाकर मिस्टर सिंघानिया को बोल सकती हैं कि राधिका बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत का पूछने के लिए उन्हें बार बार यहाँ किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आपको भी अब यहाँ से जाना चाहिए। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और बड़े भारी मन से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे। वो बार बार पलटकर पीछे की तरफ देख रही थी। इशिका नीचे पहुंचकर भी राधिका के कमरे की तरफ देख रही थी, पर पर्दों की वजह से वो कुछ नहीं देख पाई। वहीं दूसरी तरफ उनके जाते ही आदर्श जल्दी से दौड़कर ऊपर गया। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और सनक भरे लहजे में कहा, राधिका, तुमने देखा, सब मेरी बात पर यकीन कर रहे हैं। मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड श्रुति तक मुझ पर सवाल नहीं उठा पाई। वो बेवकूफ मेरा साथ दे रही है। अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा राधिका, तो बस बिल्कुल शांति से यहाँ पर लेटी रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आदर्श ने गहरी सांस ली और झुककर राधिका को उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। राधिका बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें सुनकर आदर्श को राहत महसूस हो रही थी। आदर्श ने राधिका को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम सब सुन सकती हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल तुम्हारी बेटी के अंतिम दर्शन के लिए जरूर लेकर जाऊंगा,
तुम वहां पर जाओगी जरूर, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम हिल तक नहीं पाओगी। मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ गलत किया है, तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो वो हमें अलग कर देंगे। राधिका की आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। आदर्श ने उसे फिर से बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके बगल में लेट गया था। उसने राधिका को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। राधिका सो नहीं रही थी और उन सबकी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने मन में कहा, तो केशव ने जिस लड़की को भेजा वो इशिका थी। अच्छा हुआ मेरी बच्ची जो तुमने खुद को छुपा रखा है, वरना ये तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। मुझे तुम तक कैसे भी करके ये खबर पहुंचाना होगी कि तुम्हें जो मारना चाहता है वो आदर्श है। लेकिन कैसे करूं, मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पास पड़े इस आदमी को खुद से दूर कर सकूं। राधिका जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को काबू करके लेटी हुई थी। वहीं कुछ ही देर में आदर्श नींद के आगोश में था। उसका उम्र भर यही सपना था कि कभी न कभी राधिका उसके प्यार को स्वीकार करे और वो प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर सो सके। आज उसका ये सपना पूरा हो गया था, इसलिए वो सुकून भरी नींद में था। जब राधिका को आदर्श की ठहरी हुई धीमी सांसें अपने गले पर महसूस हुई तो वो समझ गई कि आदर्श अब सो गया है। आदर्श के सोते ही राधिका ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ को खोला। इशिका पहले ही समझ गई थी कि वहां कुछ गड़बड़ है और उसे राधिका से बात नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में राधिका की मुट्ठी में एक थामल पेपर डाल दिया था। राधिका उस पेपर पर बिना किसी पेन के अपने नाखूनों से भी लिख सकती थी। उसने जल्दी से जैसे तैसे करके इशिका के लिए एक मैसेज लिखा। आदर्श तुम्हें मारना चाहता है, उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, प्लीज मेरी हेल्प करो इशिका। मैसेज लिखने के बाद राधिका ने उसे पेपर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया था। आदर्श ने अभिमन्यु से वादा किया था कि वो राधिका को इशिका के अंतिम संस्कार पर लेकर जाएगा। इशिका राधिका को बचाने के लिए यहाँ तक आई थी तो वो जरूर कल उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने भी आएगी। ये सोचकर राधिका को कुछ हद तक उम्मीद मिली कि वो इस नर्क से निकल सकती है।
वहीं नीचे इशिका सिंघानिया मेंशन से निकलने के बाद काफी परेशान नजर आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, आदर्श सिंघानिया माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे उससे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है। माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद उसने उनका बहुत ख्याल रखा और कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आयशा को माँ की बेटी समझकर उसे बहुत प्यार किया, जबकि वो उनकी खुद की बेटी भी नहीं थी। पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी माँ उनके साथ में सेफ नहीं है? क्या कोई इंसान इतनी गहरी नींद में हो सकता है कि वो हिल भी ना पाए? अच्छा हुआ जो मैंने माँ के पास वो पेपर छोड़ दिया था। उम्मीद है वो उस पेपर में अपने दिल की बात लिख सकेगी। अब मुझे कल तक का इंतजार करना होगा, जब माँ ईशानी के अंतिम संस्कार में आएगी। इशिका ने अपनी आंखें बंद की और राधिका के बारे में सोचने लगी। जब वो बाथरूम का बहाना बनाकर ऊपर कमरे में पहुंची थी, तब उसने लाइट जलाने से पहले ही राधिका के हाथ में पेपर पकड़ा दिया था। वो जानती थी कि उसके ऊपर आते ही तुरंत आदर्श और श्रुति में से कोई ना कोई उसे रोकने के लिए जरूर आएगा। इशिका बेपरवाही से वहां चल रही थी। उसे ये तक ख्याल नहीं था कि अभिमन्यु भी वहां पर मौजूद था। इशिका कुछ ही कदम आगे बढ़ी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी के साथ इशिका के कदम वहीं पर रुक गए थे। इशिका ने जल्दी से पलट कर देखा तो पीछे अभिमन्यु खड़ा था। वो उससे कुछ कदम दूर हो गया। इशिका ने अभिमन्यु को देखते ही अपनी नजरें झुका ली थीं। अभिमन्यु को अचानक अपने सामने देखकर इशिका के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने अपने मन में कहा, इसे तो मैं भूल ही गई थी। अभिमन्यु ने मुझे यहाँ आने से मना किया था और मैं झूठ बोलकर यहाँ तक आ गई। ओ गॉड, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इशिका हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये मुझ पर पक्का गुस्सा करेगा। इशिका मन ही मन दुआ कर रही थी कि अभिमन्यु को उस पर शक ना हो, जबकि वहीं अभिमन्यु उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा, अपना मास्क उतारो। अगर अभिमन्यु ने अभी इशिका को पकड़ लिया तो वो कभी भी अपने कातिलों तक नहीं पहुंच पाएगी। अभिमन्यु के लिए उसके कातिलों से ज्यादा जरूरी इशिका को प्रोटेक्ट करना है। क्या लगता है कि इशिका अभिमन्यु को बहलाकर वहां से निकल जाएगी या पकड़ी जाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा। यहां तो कमेंट लिखने का ऑप्शन भी है और 5-स्टार रेटिंग भी दीजिएगा।